हेलो जाने मन, कैसी हैं? पल्लवी की खनकती आवाज़ उसकी खुशी जाहिर कर रही थी। फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद आहाना बे इतने दिनों बाद अपनी दोस्त को देखकर उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुरा उठी थी। मैं ठीक हूँ भाभी जी, आप बताइए आप कैसी हैं? घर में बाकी सब और हमारा प्यारा भतीजा दक्षु कैसा है? मैं ठीक हूँ, घर में बाकी सब भी ठीक हैं। तुम्हें और बच्चों को बहुत याद करते हैं। तुम्हारा दक्षु तो रोज़ पूछता है कि आदि और अद्दू कब आएंगे। अभी तो वो अपनी दादी के पास है। आज साहबजादे को दादी से कहानी सुनकर सोने का शौक चढ़ा है। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर पल भर ठहरते हुए बोली, वहाँ अक्षय जी और हमारे दोनों नन्हे नटखट भांजा भांजी कैसे हैं? अक्षय जी ठीक हैं और दोनों नटखट दिन ब दिन और ज्यादा शैतान होते जा रहे हैं। आदि और अद्दू, आद्रिक और आद्रिका का जिक्र छिड़ते ही आहाना को दोनों की दिन ब दिन बढ़ती शैतानियाँ याद आ गई थी। पापा के लाडले हर रोज नई शरारत किया करते थे। दोनों स्वभाव में ना अपनी माँ पर गए ना बाप पर। उस पर हर शरारत में अक्षय का साथ मिलता, जिसके कारण आहाना की परेशानियाँ बढ़ती और आखिर में उसे ही सख्ती दिखानी पड़ती थी। वैसे अनु, तुम शरीफ और अक्षय जी भी सीधे साधे, फिर तुम्हारे ये दोनों शैतान बच्चे किस पर चले गए? पल्लवी ने सोचते हुए अंदाज में भौहों को सिकोड़ते हुए सवाल किया, जिसे सुनकर आहाना खींच उठी और चिरते हुए बोली, हमें क्या पता, उनकी मासी से लेकर चाची, बुआ, मामी सब शैतानी हैं, चले गए होंगे उन्हीं में से किसी पर। लिस्ट में पल्लवी मैडम भी शामिल थीं और आहाना की बात सुनकर खुद पर इतराते हुए वो दिलकशी से मुस्कुरा उठी थीं। बात तो तुम्हारी सही है, पर है कहाँ हमारे दोनों शैतान? बाहर बैठे कार्टून देख रहे हैं और अपने पापा का इंतज़ार कर रहे हैं। आई नहीं अभी तक अक्षय जी? पल्लवी के सवाल पर आहाना ने घड़ी पर एक नज़र डाली जो रात के 8 बजा रही थी, फिर इनकार में सर हिला दिया, नहीं, कह रहे थे आ जाने में देर होगी। कुछ देर दोनों दोस्त यूं ही बातें करती रहीं, फिर पल्लवी का ध्यान उसके बगल में कुछ दूरी पर बैठे त्रिशांत पर गया, जो आंखें छोटी छोटी किए उसे नाराजगी से घूर रहा था। जब से बात शुरू हुई थी वो तभी से यहां बैठा था और अपने नंबर का इंतजार कर रहा था, पर पल्लवी मैडम की बातें थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और बातों में इतनी मगन हो गई थी कि उसे त्रिशांत का ख्याल तक नहीं रहा। दृशांत की गुस्से भरी नज़रों को खुद पर टिके देखकर पल्लवी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही अपनी बत्ती सी चमका दी। दृशांत की भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं। पल्लवी ने अब यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। अच्छा लो, अपने भैया से बात करो, कब से आंखें छोटी छोटी किए घूर रहे हैं मुझे। अगर अब मैंने उन्हें फ़ोन नहीं दिया तो आज अपनी क्रोधाग्नि से मुझे भस्म कर देंगे। पल्लवी ने आहाना को मजबूरी बताई और झट से फ़ोन दृशांत की ओर बढ़ा दिया। दृशांत ने आंखों से पल्लवी को वार्निंग दी कि बाद में देख लेगा उसे, जिस पर पल्लवी अकड़ते हुए मुंह ऐठा और उसे जीप दिखाकर झट से वहां से भाग निकली। दृशांत ने बेबसी से सर हिलाया और ध्यान फोन पर लगा दिया, जिसकी स्क्रीन पर आहाना का चेहरा नजर आ रहा था। हेलो अनु, कैसी है मेरी गुड़िया? हम ठीक हैं भैया, आप कैसे हैं? ठीक ही है, पर तेरी और अंतरा को बहुत याद आती है, कब आएगी वापस? इन आम से शब्दों में अपनी बहनों के लिए उसका प्यार, उनसे मिलने की तड़प, बेकरारी और कोमल भावनाएं झलक रही थीं। साल भर होने वाला था अंतरा और आहाना को अपने घर गए। रक्षाबंधन पर दृशांत ही आया था और गर्मी की छुट्टियों में वो साथ में ट्रिप पर चले गए थे, जिसमें पल्लवी, दृशांत, निशांत भी शामिल थे। बीच में जाना हुआ नहीं। दृशांत का सवाल सुनकर आहाना कुछ पल सोच में पड़ गई, फिर मोहक मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए बोली, जल्दी ही आएंगे भैया और कुछ दिन वहीं रुकेंगे आप सबके साथ, हमें भी बहुत याद आती है आप सबकी। यहाँ से शुरू हुई थी भाई बहन की बातें। कुछ देर बाद पल्लवी लौट आई और दोनों ने बच्चों से बात करने की इच्छा जाहिर की। आहाना फ़ोन लेकर बाहर चली आई और टीवी की वॉल्यूम कम करते हुए बोली, बच्चों आपके मामा मामी आपसे बात करना चाहते हैं, इधर आइए हमारे पास। ये सुनने की देर थी कि आदि और अद्दू सोफे से उठकर नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ते हुए उसके पास पहुँच गए। दक्ष भैया भी है मम्मा? आदि ने खुशी से चहकते हुए सवाल किया और जवाब में दृशांत ने मायूस भरे उदास स्वर में कहा, आदि आपको बस अपने दक्ष भैया से बात करनी है, मामू और मामी से बात नहीं करेंगे आप? हम आपसे बात करेंगे मामू, नन्ही अद्दू ने बड़ी सी स्माइल पास की जिससे उसके छोटे छोटे सफ़ेद दांत मोतियों से चमक उठे। उसकी मिठाई सी मीठी खनकती आवाज़ दृशांत और पल्लवी के कानों में पड़ी और उनके लबों पर सौम्य सी मुस्कान बिखर गई। स्क्रीन पर नन्ही अद्दू का छोटा सा प्यारा सा मासूमियत भरा चेहरा उभर आया था, जिस पर बिखरे छोटे छोटे बाल उसे और भी क्यूट लुक दे रहे थे। हूबहू अपनी माँ की कॉपी थी वो, लेकिन बस दिखने और बोलने में। शरारत के मामले में शायद अपनी मासी, चाचू और मामी पर चली गई थी। मैं बात करूँगा मामू मामी से, आदि ने फोन की स्क्रीन अपनी तरफ घुमा ली। दिखने में वो भी सुपर क्यूट था, बिल्कुल अपने पापा जैसे। उस पर उसके माथे पर बिखरे बाल उसे और भी प्यारा रूप दे रहे थे। आदि के फोन लेने पर अद्दू भड़क उठी और अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से आदि को धक्का देते हुए चीख पड़ी, हम बात करेंगे। मैंने कहा ना, मैं बात करूंगा। आदि भी उस पर चढ़ने लगा, हमने पहले फोन लिया था मम्मा से, इसीलिए हम बात करेंगे। तुम जाओ यहां से, जब देखो हमसे लड़ने आ जाते हो। तू जा चूहिया, जाकर किसी बिल में छिप जा, क्योंकि बात तो मैं ही करूंगा मामू मामी से। तुमने हमें चूहिया कहा, तुम छुछुंदर। मैं छुछुंदर तो तुम बिलौटी, तुम बंदर। रुक बंदरिया, तुझे तो अभी मैं बताता हूँ, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे आदि के बच्चे। आदि और अद्दू जो अभी बस 5 साल के थे, एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे थे जैसे पिछले जन्म के दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हों। एक दूसरे को अलग अलग जानवर का नाम लेकर चिढ़ाने के बाद बात हाथापाई तक पहुंच चुकी थी और दोनों में से कोई रुकने या झुकने के मूड में नहीं लग रहा था। लड़ भी ऐसे रहे थे कि कोई उन्हें देखकर नहीं कह सकता कि वो बस 5 साल के ही हैं। दोनों को इतनी सी बात पर आपस में भिड़ते देखकर आहाना के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। वहीं फोन की दूसरी तरफ मौजूद त्रिशांत और पल्लवी दोनों की लड़ाई देखकर बेहद अफसोस से बोले, लो भाई, हो गई शुरू इनकी महाभारत। आहाना कुछ पल परेशान से एक फोन के लिए कुत्ते बिल्ली जैसे एक दूसरे से लड़ते भिड़ते अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को देखती रही, फिर फोन टेबल पर रखा और दोनों को पकड़कर एक दूसरे से दूर करती हुई तेज सख्त आवाज में चिल्लाई, बस करो तुम दोनों, अब अगर कोई अपनी जगह से इंच भर भी हिला या मुंह से आवाज बाहर आई तो दोनों को पिटाई पड़ेगी।